अग्रजौरीपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिजे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमः। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय माम चरणान्तिके। वैराग्यजुगभक्तिरसं प्रयत्नैपायन् मानन्भिक्षुमन्धम् कृपां बुधिर्ज परदुःख दुःखे सनातनस्तं प्रभुमाश्याम। इसको ठीक कर देते, ए पासे इसको कर और थोड़ा सा से बृहत भगवतामृत हमने अभी कल परसों से जयति जन निवासो देवकी जन्म बाधो इस श्लोक का की व्याख्या में बतला रहा हूं, जिसमें सनातन गोस्वामी जी ने ऐसी सुंदर टीका की कि मानो एक गागर में सागर भर दिया गया, जो सीमा रहित जो कृष्ण की अमृतमयी कथा है, सारी कथाओं को उनके जन्म से लेकर के सारी कथाओं को इसमें भर दिया है, ऐसे कृष्ण का ये जयगान कर रहे हैं। विशेष करके इन सभी श्लोकों को समझने के लिए विश्वास का धरातल होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म क्या है, पहले गुरु की आवश्यकता लोग समझें, इसका धरातल बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, नहीं तो नहीं समझ सकते। लाख समझने पर भी गुरु की क्यों आवश्यकता है, इसलिए बतलाया गया कि उत्तम श्रेय जानने के लिए, उत्तम कल्याण जानने के लिए गुरु के पास उपाय लेकर के जाए। कब जाए? जब यह संसार को दुखपूर्ण समझ ले। ये कौन वहां करा रहा? यहाँ से हटो, यहाँ से जाओ, उधर जाओ, नहीं तो सबका एक ध्यान आकर्षित कर ले जाओ। कोई बच्चा उच्चा मत उड़ान, बच्चा ले आओ मत। जब यह समझ ले अच्छी तरह से, संसार का कोई भी वस्तु हमारे सुख के लिए नहीं है। When a person knows that anything of this world, also heaven and mukti, cannot give any happiness in this life, जब अच्छी तरह से, जब दुखों का कारण है, जब इसको अच्छी तरह से समझ ले, तो उत्तम कल्याण को जानने के लिए गुरु के पास कुछ उपाय समिधा लेकर के जाए। समिधा माने क्या? पूर्व कालों में यज्ञ होता था, उसके लिए लकड़ी के लेकर के जाना। अब इस समय में शुद्ध हृदय लेकर के गुरु के पास जाए। आपकी बातों के अनुसार मैं चलूंगा, मैं आत्मसमर्पण आपके चरणों में कर रहा हूं। और तब जब गुरु के समय जाएगा, तब गुरु उसके उत्तम कल्याण के लिए भगवत भक्ति की बात बतलाएंगे। इसके पहले ये समझ में नहीं आएगा, इसके पहले उसमें आना पड़ेगा गीता में स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्तस्यके सब, और किसी को याद नहीं। बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी ऊंची कथा सुनते हैं, ये सब कैसे याद रहे? इसलिए ये सब नहीं होने से ये समझ में आ करके भी कुछ नहीं आता, प्लेटफॉर्म नहीं है। जब संसार के सुख और दुख आने पर भी वो संतुष्ट चित्त रहता है, भगवान के चरणों की जबकि भजन की लालसा होती है, तो संसार में जय पराजय, हानि लाभ, जीवन मरण, इससे तो बढ़कर के कुछ है नहीं। तो ये सब को तिनके के समान समझ लेता है। वो दुख आने पर भी बिलबिलाता नहीं, सुख की इच्छा नहीं करता, और यदि आ जाता है दुख तो क्या करता है? वो सामंजस्य करके उसमें भी प्रसन्न चित्त रहता है, क्योंकि जानता कि ये संसार में सभी कुछ बराबर हैं, ये सुख और दुख, बल्कि सुख और खराब है दुख की अपेक्षा। दुख में कभी वैराग्य भी आ जा सकता है, भगवान का भजन भी कर सकता है, सुख में तो सुख के माथे सिल पड़े। सुख के माथे सिल पड़े माने क्या? वज्र हो, दुख ही चाहिए। कुंती जी ने भी यही कहा, सुख नहीं दुख चाहिए, जिससे कि भगवान का स्मरण बना रहे। इसलिए स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ माने बुद्धि, प्रज्ञा माने बुद्धि, बुद्धि स्थिर हो गई है, संसार के सुख और दुख दोनों को बराबर समझता है, बल्कि सुख दुख की भांति और संसार में मोह पैदा करने वाला होता है, ये समझे। समझ करके न दुख की काम, सुख की कामना करे, न दुखों से कोई न हो, जैसे कि ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न काम, न सोच करता है अर्थात कोई कामना नहीं करता है, और यदि आ जाता है तो उसे घबराता भी नहीं, और स्थिर चित्त से भगवान का भजन करता है। यदि दुख में घबरा जाए तो भगवान का भजन क्या करेगा? इसलिए ये सब की जरूरत है, तब इसके बाद में भक्ति। इसलिए ये बतला रहे हैं कि पहले गुरु की जरूरत होती है। किस लिए? संसार में अब कोई किसी प्रकार से सुख नहीं, जब ये ठीक हो जाए तो गुरु के प्रति आत्मसमर्पण करके जो कहेंगे मैं करिष्ये वचनम तव, आपके वचनों को करूंगा, तब गुरु धीरे 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 उसके भक्ति राज्य में प्रवेश कराता है। तब प्रवेश करते करते ये अभी जो बातें हो रही हैं उत्तम अधिकारी के लिए है, अभी जो बातें हम कर रहे हैं ये मध्यम अधिकारी से भी ऊपर की बातें हैं ये जो, किंतु मध्यमाधिकारी इसको श्रवण करता है जो हम उस अधिकार में पहुंचे साधक के लिए। इसलिए हम लोग जो कुछ कर रहे हैं ये तो सिद्धों की बात हो रही है, किंतु इसे समझे कौन? साधक ऐसा ही चित्त करके ऐसा ही भजन करेगा गोपियों के अनुगत्य में, ब्रजवासियों के अनुगत्य में, इसलिए इस सबको कह रहे हैं। इसमें प्रभात आई टोल्ड इसमें जयति जन निवासो, जयति शब्द बतलाया गया। जयति ये क्रिया है। आसन अस्यन, अस्यन मैंने भी क्रिया है ये, और ये वर्तमान काल की क्रिया है। और वर्धयन, तीन इसमें क्रियाएं हैं, तीनों ही वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्धयन माने वर्धित हो रहा है, और जयति मैंने आप विजय युक्त हो रहे हैं, और अस्यन, अस्यन मैंने क्या, हरमन्न अस्यन, अस्यन माने आप संसार का भार उतार रहे हैं, नहीं दूर कर रहे हैं। तो ये तीनों क्रियाएं वर्तमान काल की हो रही हैं। और कृष्ण आज को 5000 वर्ष हो गया गए हुए, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये समझो, द्वारका मथुरा और ब्रज ये तीनों लीलाएं नित्य हैं, धाम भी नित्य हैं, और उनकी सारी लीलाएं नित्य वर्तमान में हैं। जब भगवान अनुग्रह करके अपनी लीलाओं के साथ में इस जगत का स्पर्श करा देते हैं योग माया के माध्यम से, उस समय उनकी लीलाएं देखने पड़ती है और धाम भी दिखाई पड़ने लगता है। नहीं तो धाम भी नहीं दिखाई पड़ता और उनकी लीलाएं भी नहीं। उस समय धाम भी अप्रकट है, लीला भी अप्रकट है, किंतु है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी जो धाम है वो धाम नहीं है। भगवान की जब लीला प्रकट होती है तो लीलाओं से स्पर्श से उसमें संक्रमण करता है, ये बात गलत है। है अभी भी, आंख खोल दे यदि माया, जोग माया हमारे, ये सबको हटा दे माया के पर्दे को, हम देखेंगे ये कृष्ण की लीला यहीं पर हो रही है, महाप्रभु की लीलाएं हो रही हैं, धाम भी है। किंतु अभी धाम दिख नहीं पड़ता, अप्रकट है, और कृष्ण की लीलाएं भी अप्रकट हैं। किंतु कृष्ण कृपा की कृपा से जब जोग माया इस जगत के साथ में या उस जीव के साथ में संबंध करा देती है तो साथ ही साथ में ये हो जाता है। जैसे मीराबाई के लिए कहा जाता है कि वो गा रही है, कृष्ण बजा रहे हैं बंसी, वो नाच रही है, और जबरदस्ती वो किवाड़ खोल करके घुसा उसका पति राणा, काजे वो कहाँ गया जो बंसी बजा रहा था, उस पर तुम नाच रही है, वो कहाँ गया, कहाँ छिपाया, इधर उधर चारों तरफ में खोज करके देखा नहीं मिला। जब वो कुछ होश में आई तो उसे पूछा जे कहाँ गया वो, तो गया नहीं तो वही तो है, तो कहाँ वहाँ है, थोड़ा सा उसका शरीर स्पर्श कर दिया, स्पर्श करने के साथ ही साथ देखा अरे, और क्षण मात्र में जब छोड़ दिया तो बस देखा जे कुछ नहीं दिखाई पड़ता, तब उनके चरणों में गिर गया। और तब तक उनका एक पैर बाहर निकल चुका था वृंदावन आने के लिए, अब इस घर में नहीं रहना है, हजार मिनती की कुछ की किंतु घर में नहीं लौटी। तो इस तरह से जोग माया सबावृतम यह है, और जोग माया थोड़ा सा हटा देती है तो साथ ही साथ ये धाम भी दिखता है और कृष्ण की लीलाएं भी दिखती हैं। अभी धाम और उनकी लीला अप्रकट है वहीं, कृष्ण इसके अंदर में है किंतु हम नहीं देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये कृष्ण है ही नहीं है, अभी हम उनको देख नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी जोग माया के साथ में हमारा भी संबंध नहीं है उनका। इसलिए धाम नित्य है, इसी को बतला रहे हैं ब्रज मथुरा और द्वारका इत्यादि की नित्यत्व, नित्य होने के कारण अभी कह रहे हैं जैसे उनकी लीला चल रही है, कृष्ण वृंदावन में क्रीड़ा कर रहे हैं, द्वारका में क्रीड़ा कर रहे हैं, मथुरा में क्रीड़ा कर रहे हैं। क्या क्रीड़ा करें, कंस को तो मारी दिया, अब क्या कर रहे हैं, द्वारका में समस्त असुरों को मार दिया, अब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वृंदावन ने तो रास कर लिया, अब कौन सी लीला कर रहे हैं। अरे एक रास लीला ही अखंड काल तक चल सकती है, तरह की लीलाएं आप कल्पना नहीं कर सकते, नित्य नवीन है। और द्वारका में भी वो पौंडरक वासुदेव इत्यादि के वध के बाद भी कितने तरह की लीलाएं हैं, उसमें से थोड़ी सी 125 वर्ष एक सेकंड के बराबर है अखंड काल में, वो एक सेकंड की लीला वहां पर हुई और बाकी भारी पड़ी है लीलाएं। इस तरह से ये अखंड लीलाएं हैं, नित्य काल में है, वर्तमान काल में भी है, भूतकाल में भी थी और भविष्य में भी रहेगी, इसलिए नित्य वर्तमान। हाँ अच्छा बोलिए तो थोड़ा था ही बोली। कैसे समझा रहा उदाहरण के द्वारा इस चीज को समझिए। कृष्णा प्रतिदिन गोचारण ब्रज में जाते हैं, तो विशेषता क्या रही, गौओं को लेकर के एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं। साधारण आदमी क्या समझेगा, किंतु यह लीला यदि अनंत काल भी चलती रहे तो उसमें नवीनता रहेगी। कैसे, आज जा रहे हैं यशोदा माँ जी का भाव देखा, दूसरे देखा जैसे राधिका जी कहीं कुंज में खड़ी हैं और कृष्ण जी झट उनके समीप में पहुंच गए और किसी ने देखा नहीं, उनका लिंगन करके आगे बढ़ गए। चंद्रावली ने देखा और उसको हो गया मान, दूसरे दिन चंद्रावली के पास में चले गए, राधिका जी को हो गया मान। कितनी तरह की जो लीलाएं हैं इसमें, कभी भी कोई पुरानी नहीं होती है, इसलिए कहते हैं कि ये सब लीलाएं नित्य हैं, नवीन नवीन नए नए रूप में। जिस दिन श्रीमती राधिका से भेंट होती है, अब दूसरे दिन भेंट होगी तो वैसे ही भेंट होगा कि कुछ नया भाव आएगा, कुछ नया भाव आएगा। कोई सखा ने उस दिन पूछ दिया, सखे मधुमंगल तू कहां जा रहा था, किससे मिला, कृष्ण बहाना बनाएंगे और उनके हाथ से मुरली गिर जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, नई नई चीजें उसमें पैदा होगी। भक्त लोग इस सब को देखते हैं नित्य नवायमान के रूप में, यहाँ पर बतला रहे हैं। उसमें से प्रकट लीलाते ही कृष्णेर ब्रज हिते मथुरा आदि गमनागमन हो जाता है। उसमें यदि नहीं गमनागमन है तो इसमें भी नहीं होगा, तो उसमें भी गमनागमन है तो इस लीला में भी होगा, क्योंकि दोनों एक है, वही लीला यहाँ पर चल रही है वहां पर चल रही है। किंतु जिस समय कृष्ण आते हैं तो अप्रकट लीला में भी वही लीला चल रही है और यहाँ पर भी वही लीला चल रही है, तो वहां पर भी गमनागमन है, लिखा है बेहद भगवतम, वहां पर भी है। इसलिए जब प्रकट हुई तो वो अप्रकट लीला में, जब मथुरा और वृंदावन में गमनागमन है तो यहाँ पर भी दिखाई पड़ा। साधारण लोगों के लिए कह दिया जाता है कि प्रकट लीला में ही कृष्ण ब्रज से मथुरा जाते हैं, तो अप्रकट में नहीं जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ। ऐसा मत समझो, ऐसा मत क्या समझो, उसी समय में अप्रकट लीला में भी वैसा ही चल रहा है। ठीक वही लीला जब जाने का हुआ माता लीला यहाँ पर भी वही होने लगी, आ रहा समझ में, वही लीला सब ठीक समय में यहाँ पर उदित हुई, इसलिए मालूम होता है जो प्रकट लीला में ही वो लीला होती है वहां नहीं होती है। ऐसा नहीं, जो चीज वहां है ही नहीं है तो वो कैसे आएगी, दोनों तो एक लीला है। इसलिए कह रहे हैं कि देखो इसको दो तरह से समझो, जो यहाँ लीलाएं हो रही हैं वहां पर नित्य हैं, इसलिए कृष्ण की प्रकट लीला जो है चल रही है वहां पर है, नहीं तो वो लीला अनित्य हो जाएगी, अनित्य हो जाएगी। इसलिए उसको भी समझो जैसे वहां पर भी नित्य चल रही है, उसमें से एक सेकंड की लीला यहाँ 125 वर्ष के लिए शुरू होकर के दिखती है और नहीं दिखती, इसलिए नित्य रूप में वहां पर भी है और दूसरे रूप में असंख्य ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड से दूसरी करते 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 करोड़ों अगिनत होते 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 भगवान की इच्छा से वो एक कल्प में एक ब्रह्मांड में वही लीला फिर उतरती है। तो इस तरह से भी वो यहाँ नहीं तो वहां, नहीं तो वहां, वो प्रत्येक लीलाएं नित्य हैं। इस तरह से उनकी लीलाएं सभी नित्य हैं। जरूर जरूर लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर कैसे लीला देखी जाएगी। है किंतु वो भाव के रूप में है, किस रूप में है, जब वहाँ जाएगी तब समझेगी। हाँ हमने वैसा बतलाया है, किंतु जब वहाँ जाएगी ना तब तो तुम हम लोगों को आकर के बतलाएगी जैसे अभी नहीं। ये कैसे होती है? तो वहां पर भी जरूर है, जिस चीज को वहां पर सत्ता नहीं है यहाँ पर नहीं हो सकती, ये समझ रखो। कैसे है? भजन करके ऊपर जाओगे तब समझो। शेष धाम अप्रकट प्रकाश से अदृश्य रूपे विराजमान जानते। ये लीलाएं वहां पर हैं, कौन कहा उस ब्रह्मांड में, किंतु कृष्ण की इच्छा से वो लीलाएं चरअ प्रकट हो जाती है। कैसे देखो, एक बतलाते हैं। बिजली के बल्ब लगाए गए हैं जो घूमते हैं, बिजली की लाइट नहीं घूमती, क्या घूमता है? एक बल्ब जल गया ना, और फिर वो बुझ गया, यहां वाला जल गया है, वो मालूम होता है कि ये बिजली की लाइट चल रही है, किंतु बिजली की लाइट नहीं चलती, क्या चलता है? एक बल्ब जल गया, वो बुझ गया, एक ये जल गया, फिर बुझ गया, फिर किंतु इतनी तेजी के साथ में वो होता है जो मालूम पड़ता है कि एक ही लाइट ऐसे घूम रही है। और एक उदाहरण, एक ही जलती हुई कोई लकड़ी को ले लो और तेजी के साथ में घुमाओ, घुमाते ऐसा मालूम पड़ा जी गोल एक खींच गया, किंतु वो है नहीं, वो तो लकड़ी के साथ में घूम रही है, किंतु ऐसे वो लग रहा है कि ये सब एक है। ऐसे ही भगवान की लीलाएं सब नित्य हैं, जहां पर वो प्रकट हो गई तो मालूम पड़ता है जो वो लीला यहां से यहां आ गई, किंतु है कहां वो, समझो? नहीं, प्रत्येक ब्रह्मांड में कृष्ण की लीलाएं अप्रकट रूप में है, यहां से बुझी वहां पर जली, ऐसे समझो। आया समझ में? इसलिए यहां पर बुझ गई माने अब अप्रकट हो गई, यहां पर हो है अब दिखाई, जोग माया का प्रभाव नहीं है उन्हें से ये दिखाई नहीं पड़ी इस, और वहां का जो बल्ब जल गया माने वहां पर देखने लगे, और फिर वही लीला दूसरी चले जगी, और पीछे वाली लीला आ गई, अब ऐसा मालूम पड़ता है कि लीलाएं सब एक के एक बार में सजी हुई देख रही हैं, किंतु एक लीला से दूसरी लीला इसी में स्वार्थ की लीला होती है, स्वार्थ की, और एक मंत्रमयी होता है, मंत्रमयी के रूप में एक एक जगह पर वो है, और जब चलती दिखाई पड़ती है तो उसी को स्वार्थ की है। ये समझना भाई बहुत जरा ऊपर की बात है, जरा समझाइए तो देखे कौन समझते हैं, आप भी समझे कि नहीं। ये सब सिद्धांत हैं, इसमें प्रवेश नहीं होने से लीला में, कथाओं में, भजन में ये प्रवेश नहीं कर सकता आदमी, इसके लिए तो भजन स्वयं कर करके तब तो कुछ देने, नहीं तो ये कहां से आएगा? भजन का हमारा उद्देश्य होने चाहिए। गौन अरे लॉट लोट और संस्कृत व्याकरण को लेकर के जो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोगों के जो प्रतिपाद्य समस्त लीलाओं का नित्यत्व है वो स्वतः सिद्ध होता है। समस्त जितनी कृष्ण की लीलाएं हैं वो सभी नित्य सत्य है, इसलिए वर्तमान काल में भी है, और प्रकट अप्रकट रूप में कथित लीला भी दोनों एक ही चीज है और साथ ही साथ में अवस्थित है। प्रकट और प्रकट अप्रकट लीलाएं, एक प्रकट है एक अप्रकट है, मालूम होता है एक प्रकट है अप्रकट, किंतु दोनों लीलाएं एक साथ में, जब प्रकट है तो अप्रकट में भी है, जब प्रकट होगी तो दिखाई देती है, नहीं प्रकट होती है तो दिखाई नहीं पड़ती है, किंतु है। इसलिए दोनों लीलाएं एक साथ में एक ही है और वर्तमान भी है। बहुत कठिन विषय, तभी एक सुन लीजिए, अभी समझ में नहीं आएगा तो भजन करते करते 10-20 वर्षों के बाद में भगवान करें कि आप लोग समझ लें। अब बतला रहे हैं, एक ही कृष्ण जयति कामदेवम, वर्धते कामज, वर्धयन कामज। ये कृष्ण की जितनी लीलाओं को बतला करके बतलाया, ऐसे जो कृष्ण हैं, ये जो कृष्ण है कैसे हैं, कामदेव हैं, उसकी भी व्याख्या हमने की। अब ये बतलाइए प्राकृत अप्राकृत समस्त काम अवतार के ये बीज हैं कृष्ण। प्राकृत जगत में हम सुनते हैं कि एक कोई कामदेव है, यहाँ तक कि जगत को पागल बना देते हैं वो कामदेव किसी के हृदय। उस समय मनुष्य एकदम कुत्ता जैसा बन जाता है, उस समय में स्त्री पुरुष को कोई भी लज्जा भय इत्यादि कुछ नहीं, एकदम पागल हो जाते हैं उस काम में। वो काम को बतलाया गया है ये कामदेव, ये जड़ीय कामदेव हैं। तो ये भी कौन है, उनकी छाया है, नहीं तो इनमें ये शक्ति नहीं आएगी। और जो कामावतार हैं चतुर्व्यूह के अंतर्गत में, जो प्रद्युम्न जो कामदेव हैं वो उनके अंश हैं। और कृष्ण कौन है, वृंदावन वाले, वो मूल कामदेव हैं। वे जो चतुर्गुह वाले, जो द्वारका वाले, जो प्रद्युम्न जी हैं, वो उनके शाखा स्वरूप या अंश स्वरूप हैं। अब फिर अंश अवतार समूह अनंत ब्रह्मांड में जितने भी कामदेव हैं, कौन कामदेव, जैसे शंकर जी तपस्या कर रहे हैं, इंद्र ने देखा, जैसे ये हमारे इंद्र पद के लिए शंकर जी तपस्या कर रहे हैं इसलिए अश्वराओं को भेजा, तो शंकर जी ने देखा उनको कुछ क्रोध आ गया और वो सब जितने थे वो कामदेव भस्म हो गए। फिर उन्होंने जन्म लिया कहाँ, द्वारका में, द्वारका में प्रद्युम्न के रूप में वो गए जन्म लिया। उधर में वही रति जी जो कामदेव की स्त्री हैं वो बाणासुर के यहाँ थी, है रसोई करती थी और प्रतीक्षा कर रही थी और अपने पति को शरीर दिलाने के लिए चेष्टा कर, है संबरासुर के घर, बाणासुर ने संबरासुर के घर में। और वहाँ पर एक मछली के घर, जब यहाँ पर जन्म हुए और मछली ने उनको निकल गई, और इसके बाद में उसके घर में वो रसोई बना रही थी, वो मछली आई उसका पेट चीरा तो वो बच्चा निकला। तो देखिए आई यही कामदेव है, उनके साथ में रहे। फिर वो अपने घर में पीछे लौटे, ये श्रीमद् भागवत के द्वारका लीला में ये सबका वर्णन है विशेष। फिर वो यहाँ पर आए, उनकी मैया भी नहीं पहचान सकी, उनको अपना बेटा न समझ कर कृष्ण आ रहे हैं, किंतु थे वो प्रद्युम्न जी। तो ये जो प्रद्युम्न जो हैं इतने सुंदर हैं, तो ये सौंदर्य जो भैया है ये कृष्ण का अंश होता है। तो ये तीन जो काम है ये कृष्ण ही कामदेव, किंतु कौन कामदेव हैं कृष्ण के, अप्राकृत। वहां पर गोपियों के साथ में रहने पर, श्रीमती राधिका के साथ में रहने पर वो तब वो कामदेव हैं। उनकी उपासना कैसे होती है, काम बीज और काम गायत्री के द्वारा होता है, गुरु इस चीज को देता है। जो लोग काम गायत्री सदगुरु से नहीं लिया और काम बीज नहीं लिया, उसका जो यह है गोपाल मंत्र जो है ये उसका परिशिष्ट है, गोपाल मंत्र है ठीक है पूरा, किंतु उसका परिशिष्ट क्या है, काम गायत्री। जब तक उसके साथ से फिर मिल करके काम नहीं करेगा तब तक कृष्ण की ये काममयी लीलाओं में, प्रेममयी लीलाओं में गोपियों के साथ में जो होते हैं ये पूर्ण नहीं होगा। इसलिए इस दोनों की आवश्यकता है, इसलिए ब्रह्मा को पहले गोपाल मंत्र और पीछे से, इसलिए इसकी अभी समझाने से भी नहीं समझ में आएगा, भजन परायण होगा ये व्यक्ति, ये सब समझ करके गुरु की कृपा को समझेंगे, और नहीं तो गुरु का और वैष्णव का कोई भी महत्व नहीं देंगे। गुरु किस लिए वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए गुरु को छोड़ करके इधर उधर जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब आए तो काला कृष्णदास नहीं समझ सका, बहुत से लोग नहीं समझ सके। इसलिए जिनको ये मालूम हो जाता है जीवन का ऑब्जेक्ट, ये हमारा जीवन का क्या यह गुरु कैसे दे रहे हैं, तब तो गुरु के लिए प्राण उस समय दे देगा। इसलिए समस्त कंदर्वों के भी कंदर्प जो हैं, ये कौन है, कृष्ण है, और बाकी जो हैं उनके पत्र स्थानीय हैं प्रद्युम्न इत्यादि, और जगत के काम हैं वो छाया स्थलीय है। इसलिए काम गायत्री और काम बीज के द्वारा एतादृश मदन मोहन रूपे ध्यान तदीय उपासना विधि, इसलिए काम गायत्री के द्वारा और काम बीज के द्वारा उनकी उपासना की विधि है। बिना इसके कभी भी कोई ब्रज रस में गोपी भाव में नहीं आ सकता। कहते हैं जैसे हरि नाम तो मिल गया, अब इसकी क्या जरूरत है, नहीं समझते लोग। फिर सन्यास की क्या जरूरत है, ये भी नहीं समझ पाते। वही काम का जो भाव वही सन्यास में दिया जाता है हमारे गौड़ीय वचनों की धारा में उसकी प्राप्ति के लिए। काम गायत्री मंत्र स्वरूप चैतन्य चेता में भी बतलाया गया है, कृष्ण स्वरूप सार्ध चक 24 अक्षर तार है, ये अक्षर चंद्र है, कृष्ण कराए उदय श्री जगत कई काममय है। तो ये साधारण बंगला प्यार में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे विद्वान आदमी भी और भक्त लोग भी नहीं समझ पाए, कृष्णदास कविराज के इन भावों को नहीं समझ पाए, और ढूंढते ढूंढते व्याकरण और सब खत्म हो गया, नहीं समझ में आया कि जब राधा कुंड में गिर करके प्राण अब छोड़ देंगे, डूब जाएंगे, मरेंगे, उस समय राधा जी ने कृपा करके इंगित किया, देखो इस व्याकरण में थोड़ा सा इसका संकेत है, जाओ देखो तुम्हारी चित्त शांत हो जाएगा और समझेगा ये काम गायत्री क्या क्या अर्थ है। काम गायत्री मंत्र स्वरूप ये मंत्र है ना, कृष्ण ये मंत्र होने पर भी कृष्ण का स्वरूप है, कौन स्वरूप, वृंदा वाला बन वाला गोपियों के साथ में साक्षात मनमथ मनत है, मनमथ कृष्ण का रूप, उसमें 24.5 अक्षर हैं, उसमें ऐसे गिनने से मालूम होगा ये 25 अक्षर हैं, है ना, 25 अक्षर आपको मालूम, और नहीं जाने समझने पर 24 अक्षर मालूम पड़ेगा, किंतु उसमें 24.5 अक्षर हैं। आधा अक्षर कौन सा है ये समझना बड़ा भारी कठिन है, हम लोग उनके कहने से विश्वनाथ चौगती ठाकुर के लिखने से आप समझते हैं ये, किंतु अनुभूति कहाँ है, अनुभूति नहीं है उसमें से, क्लिंग को छोड़ करके और जब चलो तो उसमें देखेगा ये 24.5 अक्षर, उसमें अंत में आधा तो है प्रचोदयात, वो आधा अक्षर, बाकी सब पूर्ण अक्षर मालूम पड़ता है, इसलिए मालूम पड़ता है ये अंतिम जो अक्षर है वही है आधा अक्षर, किंतु बात ऐसा नहीं, वो भी पूर्ण अक्षर है। आधा अक्षर कौन होगा, यहां पर वो उसने बतलाया, क्या बतलाया, पांचवा जो अक्षर है उसके पहले या के पहले, जो पहले है वही होगा, यही व्याकरण के अनुसार में उसने सिद्ध किया। अब वो आधा अक्षर कृष्ण का है कौन, ये शरीर का अंग कृष्ण में भी 24.5 अंग हैं, पूर्ण चंद्र हैं, 12 अंग तो हैं किंतु उसमें 24.5 चंद्र हैं, आधा चंद्र कौन है, इसलिए बतला रहे हैं चंद्र तो एक है, कौन सा, मुख चंद्र, और दो नेत्र है ना, दो कान, और चौथा है ललाट, ललाट में अर्ध चंद्र है, ये केस से ढका हुआ है इसलिए आधा इसको ललाट का माना, चंद्र बिंदु, ललाट भी पूर्ण है किंतु ये जो है ये उसमें जो है बिंदु जो है वहां पर बिंदु एक माना है, बिंदु भी पूर्ण है किंतु ये आधा है, ये गुरुमुख से सुन करके अच्छी तरह से समझ करके ही समझेंगे। अब एक हमने इंगित दिया, ये सब बतलाने की चीज नहीं है, क्यों, समर्पित आत्मा हम नहीं है और अधिकारी नहीं है, हमारे पास में वो देने के लिए गुरु जी को दक्षिणा में नहीं है कुछ, इसलिए जब होगा तो अनुग्रह करके देंगे तो वो स्थायी रह सकेगा। बाघ का दूध सोने के बर्तन में रहता है, नहीं तो नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। बाका दूध शेर की, शेरनी का। और जो पारा है ना, हाथ पर लेंगे तो क्या होगा, छेद करके निकल जाएगा, शरीर में जाएगा तो किसी न किसी तरह निकलेगा ही, रह नहीं सकता, उसके लिए पात्र चाहिए। तो इसी तरह से ये चीजें हैं, सदगुरु के पास में पात्रता लेकर के जाएंगे, भजन की उत्कंठा होगी तो इन चीजों को समझेंगे, तब कृष्ण की इन चीजों को समझेंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए काम गायत्री से उपासना करने के लिए विधियों को समझ करके उसमें प्रवेश करें, तब ये सब चीजों का अर्थ समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझेंगे। कितना बज गया, साढ़े, हाँ, ट्रांसलेशन की। लोगों को ब्रह्मा को भी चलाए मानकर, हाँ, सी एंड रियलाइज एक्चुअली, देन व्हेन आवर दिस काम गायत्री इज परफेक्टेड, देन वी विल सी कृष्ण इन दैट मंत्र विथ गोपीज, ऑल गोपीज, एवरीथिंग वी विल रियलाइज। गौर प्रेमानंद।